Now I know you're tired.
मुझको मालूम आप थके हुए हैं.
We'll have a short class for 30 minutes.
मेरे पास छोटी सी कक्षा है 30 मिनट की केवल.
But don't forget tomorrow. I want you to have an answer to those questions.
लेकिन जो प्रश्न मैंने आपको आज दिए थे उनके कल हमें उत्तर चाहिए.
You don't have an answer to those questions. We're not going to let you come in.
अगर आपके पास उन प्रश्नों के उत्तर नहीं होंगे तो आप उस कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे यहाँ पे.
Because people have problems and people have questions and people have needs.
क्योंकि लोगों के पास समस्याएं हैं, लोगों के पास प्रश्न हैं, लोगों की आवश्यकताएं हैं.
Sometimes the easy part of pastoring and leading a church is standing up here and preaching.
और कई बार कलीसिया की अगुवाई करने में आसान है कि आप सामने खड़े होकर प्रचार करें.
But can you properly interpret the word of God and specifically apply it to the people of God to help them in their need?
लेकिन क्या आप वास्तव में परमेश्वर के लोगों की सहायता कर सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं?
Any questions thus far?
अभी तक जो हम लोगों ने प्रश्न किए हैं उसके जो अभी तक जो बातें की हैं क्या उनके बारे में कोई प्रश्न है आपके पास अभी तक की? कोई प्रश्न है क्या आपके पास? अंशुमन भाई को छोड़ के उनके अलावा किसी और के पास कोई प्रश्न है? कोई है किसी पास कोई प्रश्न? कोई प्रश्न, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई टिप्पणी, कोई खुशी, कोई गवाही, कोई साक्षी, धन्यवाद का विषय. You said that the Lord can give a gift of healing to somebody for a time period and take it back. Does He do that with other gifts too?
That is possible.
ऐसा संभव है.
Also, Timothy, see that you do not neglect the spiritual gift that is within you.
और पौलुस कहता है कि तिमोथियुस कहता है कि जो तुमको आत्मिक वरदान मिला है ये ध्यान दो कि तुम उसकी अवहेलना मत करो.
Paul told Timothy to stir up to life again the gift of God that is within you.
और पौलुस कहता है कि जो वरदान तुमको मिला है उसको बढ़ाओ, उसको उसको उपयोग करो.
A gift is a stewardship from God.
वरदान परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भंडारीपन है, एक दान है.
You are unfaithful in the use of your gift. He may withdraw the influence of the Spirit of God on your gift.
तो इस बात का ध्यान दें, जो वरदान हमको मिलते हैं वो प्रभु की ओर से दान है, ठीक है, और हम उसके भंडारी हैं. अगर जो दान प्रभु जी ने हमको दिया है उनका हम सही से उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसा संभव है प्रभु जी उसको वापस ले लें.
You do not lose your salvation.
आप अपना उद्धार नहीं खोते हैं.
But you may forfeit and lose your ministry.
लेकिन आप अपनी सेवकाई को खो सकते हैं और वो आपसे ली जा सकती है.
God gives men gifts, especially to give, to teach and preach. He intends them to use it and for it to be continual.
और जब परमेश्वर लोगों को वरदान देता है खासतौर से शिक्षा देने का, सिखाने का, तो परमेश्वर आशा रखता है कि लोग उसको नियमित तौर से, नियंत्रित तौर से उपयोग करेंगे.
But if you are unfaithful in the use of that gift,
लेकिन अगर आप उस सेवा के उपयोग में अविश्वास योग्य हैं, उस वरदान के उपयोग में,
or you misuse that gift,
और या फिर आप उस वरदान को लेकर के दुरुपयोग करते हैं,
or you fall into sin and are disqualified for being a preacher or a teacher,
और या फिर आप पाप में गिर करके एक शिक्षक या प्रचारक होने से अपने आप को डिस्क्वालीफाई करते हैं, मतलब अपने आप को क्या करते हैं, अयोग्य करते हैं,
God may remove you from the place and position where you use that gift.
तो फिर परमेश्वर आपको उस जगह से और उस स्थान से परमेश्वर हटा सकता है जहां पे अपने दानों को आप उपयोग कर रहे हैं.
Jesus said, if you are unfaithful in that which has been given to you, it may be taken away from you and given to another.
यीशु मसीह ने कहा, जिस चीज में तुम अविश्वास योग्य हो, जो वरदान तुमको दिया गया वो तुमसे लेकर किसी और को दिया जा सकता है.
He's talking in that context about something slightly different, but there's a general principle there.
यद्यपि प्रभु उस संदर्भ में किसी और चीज के बारे में बात करें, लेकिन ये सामान्य सिद्धांत यही है.
A gift is a stewardship.
एक जो वरदान होता है वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भंडारीपन है. अगर आप आलसी हैं, अगर आप गैर जिम्मेदार हैं, अगर आपने वरदान का उपयोग नहीं करते हैं, अगर आपने अधिकार को गलत उपयोग करते हैं, अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है, अगर आपने घर में विश्वास योग्य नहीं है, तो आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट होगी और आपका जो वरदान का उपयोग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. आप समझ रहे कि हम क्या कह रहे हैं?
That gift may be reduced to a small, unusable presence in the man's life.
जो वरदान आपको दिया गया है अगर उसको सही से आप उपयोग नहीं करेंगे तो ऐसा संभव है कि धीरे धीरे आपके जीवन में उसका उसकी उपयोगिता कम होती जाए और फिर वो उपयोग के लायक ना रहे.
Let me ask you a practical question.
अब मैं आपसे एक व्यवहारिक प्रश्न पूछूंगा.
Because it happens in India, it happens in America, it happens everywhere.
क्योंकि भारत में होता है, अमेरिका में होता है, सब जगह होता है ये बात.
If a man is in a formal position of leadership in the church,
अगर कोई व्यक्ति एक कलीसिया में औपचारिक जिम्मेदारी है किसी के पास,
Bible calls those leaders by three terms.
और परमेश्वर का वचन उनको तीन शीर्षकों से बुलाता है, तीन शब्दों से बुलाता है. ये वो लोग हैं जिनके पास आत्मिक अगुआपन है.
We've talked about this many times before.
इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं.
How does the Bible describe the spiritual leader in the church?
कलीसिया में आत्मिक अगुओं को बाइबल कैसे वर्णन करती है?
He says he's a pastor.
अगुआ है.
He's an elder.
और वो एल्डर है, प्राचीन है.
He's a bishop or an overseer.
या तो फिर वो बिशप है या तो फिर अध्यक्ष है.
I've asked you before.
मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ.
Those three terms describe three different men or do describe the same man?
पासबान और प्राचीन और बिशप, क्या ये तीन अलग अलग जन को वर्णन करें या एक ही आदमी का वर्णन कर रहे हैं? हाँ जी, एक ही जन का वर्णन कर रहे हैं कि तीन अलग अलग जन का वर्णन कर रहे हैं? पास्टर, बिशप और एल्डर, प्राचीन. हाँ जी, तीन भिन्न भिन्न.
They're saying the same.
They're mixed.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
Some of you say the same. Some of you say they're not the same.
कुछ लोग आप लोग कह रहे हैं कि वो एक ही चीज है, कुछ लोग आप लोग कह रहे हैं एक चीज नहीं है.
Who is right?
कौन सही है यहाँ पे? अलग अलग लोग हैं, तीनों अलग अलग लोग हैं.
How do you determine the answer?
कैसे मालूम उसका उत्तर सही क्या है?
Do you say this?
क्या आप ये बोलते हैं?
Well, in my opinion,
मेरे विचार के अनुसार.
What do you say?
लेकिन आप कैसे कहेंगे? आप ऐसे कहेंगे
know the word of God.
कि आपको परमेश्वर का वचन मालूम, जो वचन के अनुसार क्या कहेंगे आप?
Scripture to interpret scripture.
और आपको परमेश्वर के वचन को अनुमति दी होगी परमेश्वर के वचन का अनुवाद करने के लिए.
So let's just stop right there and use the biblical principle to answer that question.
तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे और बाइबल का सिद्धांत उपयोग करेंगे इस उत्तर को देने के लिए, व्याख्या के सिद्धांत को उपयोग करेंगे.
Look quickly in Acts chapter 20.
मेरे साथ जल्दी से देख ले प्रेरितों का परमेश्वर के वचन का सही व्याख्या की बात कर रहे हैं हम लोग. और हम लोग इसके बारे में पहले बड़े विस्तार से देख चुके हैं हम लोग. आप में से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं दो या तीन या चार या पांच छह बार सुन चुके हैं इस बात को. हमने आपको देखा बड़े ध्यान से, आपने अपनी पुस्तक में लिखा भी इसको. और क्या आपने हाल ही में उस पुस्तक को देखा या नहीं देखा है?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
We're not here just speaking to the air.
हम यहाँ पे हवा में बात करने के लिए नहीं आए हैं केवल.
We're seeking to speak the word of God.
लेकिन हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करने के लिए आए हैं.
And you will be responsible as to how you hear the word of God.
और आप जिम्मेदार होंगे कि कैसे करके आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं.
It says Ezra studied the law of the Lord.
और एज्रा के लिए बताया था कि एज्रा ने परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन किया.
And did the law of the Lord.
और फिर उसने सुना और आज्ञा मानी, जो कहा गया था उसको किया परमेश्वर वचन के अनुसार. और फिर उसने परमेश्वर वचन को सिखाया भी लोगों को, व्यवस्था को. और याकूब कहता है वो व्यक्ति जो केवल सुनता है लेकिन वचन के अनुसार करता नहीं है, वो उस व्यक्ति के समान है जो दर्पण में अपने मुख को देखता है और बड़ी जल्दी ही वो पलट जाता है और भूल जाता है कि वो उसने क्या क्या देखा था दर्पण में?
But he that looks into the royal law, the perfect law of liberty, and is not just a hearer of the word, a doer of the word.
लेकिन वह जो इस सिद्ध वचन में, परमेश्वर के वचन में देखता है और ना सिर्फ सुनता है लेकिन उसका करने वाला भी होता है.
So who are the leaders in the church?
कलीसिया में कौन है वो अगुए लोग?
The Bible uses several terms.
बाइबल में कई शब्दों को उपयोग किया गया कलीसिया के अगुओं को समझाने के लिए, बताने के लिए. हम यहाँ पे सेवकों की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म सेवकों की बात नहीं, डीकन उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम.
Deacon do not have spiritual authority.
जो धर्म सेवक है कलीसिया में, जो डीकन होते हैं, उनके पास कलीसिया में आत्मिक अगुवाई का अधिकार नहीं है.
They have responsibility for the physical ministry in the church.
लेकिन जो कलीसिया में जो डीकन है, जो धर्म सेवक लोग हैं, उनके पास कलीसिया के भौतिक सेवा अधिकार करने का जिम्मेदारियों का काम है.
They are under the management and leadership of the spiritual leaders of the church.
और जो डीकन लोग हैं, जो धर्म सेवक लोग हैं, वो लोग कलीसिया के आत्मिक अगुओं के अधीन आते हैं.
So we are asking this question.
तो हम प्रश्न ये पूछ रहे हैं आपसे.
Bible describes the leaders of the church.
जब बाइबल वर्णन करता है बाइबल कलीसिया के अगुओं का,
says pastors,
तो कहता है पासबान,
elders,
प्राचीन लोग,
overseers or bishop,
और बिशप या अध्यक्ष लोग.
So does that refer to the same office or to three different offices?
क्या वो एक ही दफ्तर की कार्यकारिणी की बात कर रहा है, काम की बात कर रहा है, या अलग अलग दफ्तरों की बात कर रहा है, अलग अलग लोगों की बात कर रहा है?
So immediately when we ask that question, your mind ought to turn to four or five passages in the Word of God.
और जैसे हम ये प्रश्न पूछते हैं, एकदम से आपके दिमाग में तीन चार पद आ जाने चाहिए परमेश्वर के वचन में जिनकी ओर आप मुड़ सकते हैं.
We have surveyed this several times.
इसको हम लोग कई बार, इसका हम लोग अवलोकन कर चुके हैं. एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कुछ पदों को.
Acts chapter 20.
आप जो काम 20वां अध्याय.
And verse 28, verse Acts chapter 20, verses 17 to 27. Paul is describing his own ministry.
Paulus यहाँ पे अपने स्वयं की सेवा का वर्णन कर रहा है.
And if you're going to be a preacher, you should seriously, consistently study Paul's example.
और अगर आपको प्रचारक होना है, तो आपको नियमित तौर से पॉलुस के उदाहरण को देखना है.
Well, remember, Paul said, "Be imitators of me."
क्योंकि पौलुस ने कहा मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ.
He told Timothy, "You followed my example."
उसने तिमोथी से कहा तुम मेरा अनुसरण करो.
Now in verses 28 to 35, he describes the ministry of the leaders in the church.
और यहाँ पे प्रेरितों का 28 पद से 35 पद में पौलुस कलीसिया में अगुओं की सेविकाई का वर्णन कर रहा है.
Now look first of all at verse 17.
और 17 पद को देखिए सबसे पहले.
What was the leaders of the church at Ephesus called?
और 17 प्रेरितों का उसके 20वां अध्याय उसका 17 पद में कलीसिया के अगुओं को सबसे पहले क्या कहा गया?
Elders.
यहाँ पे कलीसिया का अगुओं को प्राचीन करके कहा गया है.
He is speaking to elders.
यहाँ पे कलीसिया के अगुओं को कहा जा रहा है, बात की जा रही है, प्राचीनों से बात की जा रही है.
Look at verse 28.
और 28 पद को देखिए यहाँ पे.
What does he tell them to do?
और उनको क्या कहा गया है उनको करने के लिए?
Be on guard for yourself and all the flock of God.
और 28 पद में कहा गया है कि तुम अपने आप को संभाल के रखो और कलीसिया के लोग भी रखवाली करो.
Why?
क्यों?
Because the Holy Spirit has made you overseer.
क्योंकि परमेश्वर ने तुमको अध्यक्ष बनाया है.
And what are they to do?
और उन अध्यक्षों को क्या करना है?
They are to pastor or to shepherd the church of God.
और उनको कलीसिया की रखवाली करना है, पासबानी करना है.
Now this is very plain.
और ये बड़ा सरल है यहाँ पे.
Who is he speaking to?
किससे बात कर रहा है यहाँ पे?
Elders.
प्राचीनों से.
What does he call them?
उनको क्या बुला पुकारता है यहाँ पे?
Overseer.
अध्यक्ष.
What does he tell them to do?
और फिर उनसे क्या कहता करने के लिए?
To shepherd the church of God.
कलीसिया के लोगों की चरवाही करने के लिए, रखवाली करने के लिए.
Word shepherd is the verb form of the noun form from which we get the word pastor.
और जो चरवाहे या रखवाली शब्द है उसी शब्द से हमको मिला है शब्द हमारे भाषा में पासबानी का, पास्टर का.
So he's speaking to one group of people.
एक ही समूह के लोगों से बात कर रहा है.
They are elders.
उनको प्राचीन कह रहा है.
He calls them overseers.
और फिर उनको अध्यक्ष भी बुला रहा है.
Tells them to pastor the church.
और फिर उनसे कह रहा है तुम कलीसिया की पासवानी करो.
Look in the book of Titus.
तीतुस की पुस्तक में आइए मेरे साथ.
Titus and chapter 1.
तीतुस का पहला अध्याय में आइए.
Why does Paul send Titus to Crete?
और यहाँ पे पौलुस क्यों इसको तीतुस को क्रीत क्रीत नगर में भेजता है क्यों?
Verse 5. Look at verse 5.
पांचवें पद में देखिए.
We're trying to interpret the word of God.
वो हम लोग परमेश्वर के वचन का अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं.
Look at verse 5.
पांचवें पद.
Why did Paul leave Titus in Crete?
क्यों पौलुस ने तीतुस को क्रीत में छोड़ दिया? बोतल लाना ग्लास नहीं. क्यों पौलुस ने तीतुस को क्रीत में छोड़ दिया? पौलुस को क्रीत में क्यों छोड़ा तीतुस को बताइए.
To appoint elders in every church.
हर कलीसिया में वो प्राचीनों को नियुक्त करें.
Then he gives them the requirement of elders.
और फिर वहां पे प्राचीनों के जो गुण हैं उनका वर्णन करता है वो.
Then if you're going to choose elders, they have to have these qualifications.
और फिर वो कहता है अगर तुम्हारे पास प्राचीन होंगे तो इन प्राचीनों के कुछ गुण होने चाहिए.
Look at verse 7.
और सातवें पद को देखिए.
What does he call them?
और फिर वो क्या कहता है वहां पे?
Overseer.
वहां पे कहता है उनको अध्यक्ष बोलता है वहां पे.
Do you see that?
क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नहीं देख रहे हैं?
Who is the elder?
कौन है अगुआ?
He's an overseer. It's the same word we get the word bishop.
और ये वही शब्द है जहां से हमको बिशप शब्द मिलता है.
First Peter.
और फिर उसी को देखिए पहले पत्रस में देखिए उसी के तुरंत बाद.
First Peter in chapter 5.
और पहले पत्रस में उसके पांचवें अध्याय में.
Verse 1.
उसके
First Peter 5, verse 1.
पांचवा अध्याय पहला पद पांचवा अध्याय इसका पहला पद.
Who is he talking to?
वहां पे किससे बात कर रहा है?
Look at the verse with your own eyes. First Peter.
और यहां पे देखिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे. Fellow elders. Okay.
He's talking to elders. He says, "I exhort the elders among you."
और वो कहता है कि हम तुम्हारे बीच में जो प्राचीन हैं, उनको वो उत्साहित करता है.
And verse 2.
और फिर दूसरा पद.
What does he tell them to do?
और फिर उनसे क्या कहता करने के लिए? दूसरे पद में क्या कहता उनसे करने के लिए? रखवाली करने के लिए.
That word shepherd is the same word we get the word pastor from.
और जो अंग्रेजी में जो शब्द है वो चरवाही करने का शब्द है जो कि हमारे यहाँ पे हिंदी में नहीं है. जो रखवाली है रखवाली के बदले वहाँ पे चरवाही होना चाहिए चरवाहे. तो जो चरवाहे का जो शब्द है
we've looked at just three verses.
तो हमने तीन शब्दों को देखा. So there's the shepherd word is not there in Hindi. रखवाली आपके वाले हमारे वाले में नहीं है. रखवाली प्रोटेक्टर.
Well, that's a useful translation. That's a useful translation, but in the Greek, it's the same word for pastor.
लेकिन जो यूनानी भाषा में वहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया पांचवें पद पांचवे लेके दूसरे पद में वो शब्द पास्टर के लिए उपयोग किया गया. जो पास्टर शब्द अंग्रेजी में वही शब्द वहाँ पे चरवाहे का उपयोग किया गया.
There's the noun form that's called pastor or shepherd.
और वो जो चरवाहा या पासबान करके पास्टर जो शब्द है वो आया यहाँ पे.
That's who he is.
और यही है एक सेवक एक अगुआ एक प्राचीन.
A verb form of this word.
और एक क्रिया का भी रूप है इस शब्द में यहाँ पे.
And that's what he does.
और वो ये कार्य करता है ये.
What does a shepherd do?
एक चरवाहे का काम क्या है भाई?
He protects the sheep.
वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है.
He feeds the sheep.
वो अपने भेड़ों को भोजन खिलाता है.
And he leads the sheep.
और वो अपने भेड़ों को अगुवाई करता है.
Now we've talked about this several times.
और हम इसके बारे में कई बार बातचीत कर चुके हैं.
The need of the church for India is for true
और कलीसिया के अगुओं की आवश्यकता है सच्चे पासबानों की. अब मैं इस प्रश्न को एक बार फिर से पूछ लेता हूँ.
पास्टर
पासबान
बिशप
बिशप
एल्डर
प्राचीन.
That referred to the same person or three different people?
क्या वो एक ही जन की बात हो रही है कि तीन अलग अलग लोगों की बात हो रही है?
But in most churches,
लेकिन ज्यादा चर्चेस में क्या होता है?
You have a bishop.
ऊपर एक बिशप होता कि नहीं होता है?
He's over all the churches.
और वो सारे चर्चेस के ऊपर होता कि नहीं होता है?
He's the big boss.
वो बड़ा मालिक होता है?
And he usually has a big belly.
और उसके अक्सर बड़ा पेट होता है?
And underneath him, you have the pastor.
और फिर उसके नीचे छोटे-छोटे पासबान होते हैं।
They are the main preachers in the church.
और वो अलग-अलग कलीसियाओं के मुख्य प्रचारक होते हैं।
And under them, you have the other elders.
और उनके नीचे अलग-अलग प्राचीन होते हैं।
And they just sit around and watch the pastor do things.
और जो प्राचीन लोग होते हैं, वो बैठे रहते हैं, देखते हैं पास्टर क्या कर रहा है।
Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को।
These are three terms that describe three different functions or aspects of one man's ministry.
एक व्यक्ति की सेविकाई कलीसिया के संदर्भ में इन तीन अलग-अलग शब्दों के द्वारा वर्णन किया जा रहा है उसको.
Among the elders or pastors of a church, certain men may have certain gifts and certain experience that puts them in a peculiar position.
इन प्राचीनों के बीच में कलीसिया के भीतर कुछ लोग हो सकते हैं, एक व्यक्ति हो सकता है जिसको परमेश्वर कुछ विशेष वरदान देता है या योग्यता देता है या अनुभव देता है जिसकी वजह से उसको एक विशेष स्थान रहता है उसका.
Look at 1 Timothy and chapter 5.
पहला तिमोथियुस का पांचवा अध्याय देखिए मेरे साथ.
Very important verse.
पहला तिमोथियुस का पांचवा अध्याय उसका देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे.
Instruction to Timothy.
Paulus यहाँ पे तिमोथियुस को कुछ निर्देश दे रहा है.
Let me ask you a question.
एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे.
Was Timothy a pastor in the church?
क्या तिमोथियुस एक कलीसिया में पासबान था?
Yes.
किस कलीसिया में? He was a pastor in the church at Ephesus.
Paul sent him to Ephesus for a purpose.
Paulus ne Timotheus ko Ephesus ki kalisya mein bheja ek uddesh ke liye.
He left Ephesus.
Aur phir usne Ephesus chhod diya.
Then he went to Philippi.
Aur phir wo Philippiyon ki kalisya mein gaya.
Philippi.
Aur phir Philippiyon ki kalisya chhod diya usne.
Then he went to Corinth.
Phir wo Corinthiyon ki kalisya gaya. Aur phir Corinthiyon ko bhi chhod diya usne.
Then he went to Thessalonica.
Phir wo Thessaloniki ki kalisya gaya.
Thessalonica.
Aur phir Thessalonika bhi chhod diya usne.
Listen carefully.
Dhyan sunis baat ko.
Was Timothy a true pastor of one church?
Kya Timotheus वास्तव में एक कलीसिया का पास्टर था?
A sensitive reading of the New Testament will show that Timothy was in various places for temporary times for a specific ministry.
अगर आप नए नियम को पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि तिमोथियुस अलग-अलग जगह में कुछ समय के लिए कुछ विशेष सेवा के लिए उसको रखा गया था.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं?
Now, for certain times and certain places, Timothy did the function of a pastor, if you will.
और कुछ समय, कुछ जगह पे थोड़ी देर के लिए पौलुस ने, तिमोथियुस ने पासबान के रूप में सेवकाई अवश्य की.
But there's no indication that Timothy was ever appointed, ordained, the formal pastor of one particular church in a permanent position.
लेकिन हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, इस बात की कोई गवाही नहीं कि पॉल कि तिमोथियुस को किसी एक कलीसिया के लिए, एक जगह के लिए कुछ समय के लिए उसको नियुक्त किया गया हो, अभिषेक किया होगा एक पासबान के तौर पर.
And the same we could say about Titus.
और यही बात हम तीतुस के बारे में बोल सकते हैं.
Titus was in several churches at different times throughout the history of the New Testament.
तीतुस भी नए नियम के इतिहास में अलग कलीसियाओं में कई जगह पाया जाता है सेवा करते हुए.
But Paul tells Timothy in chapter 5 verse 17.
लेकिन पौलुस तिमोथियुस को 5 अध्याय 17 पद में कहता है.
Look at it.
देखिए उसको.
Let the elders who rule well be considered worthy of double honor.
जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं वे दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं.
Especially those who work hard at preaching and teaching.
विशेषकर वे जो प्रचार और शिक्षा कार्य में कठिन परिश्रम करते हैं.
Now what observations can we make from this verse by way of interpretation?
और इस पद का को देखते हुए हम क्या लागूकरण कर सकते हैं?
Number one,
पहली बात,
there were possibly several elders in one church.
ऐसा संभव है कि एक ही कलीसिया में कई प्राचीन हुआ करते थे.
Says in Acts chapter 20, he called for the elders of the church at Ephesus.
और जिस तरह से पेत्रुस के 20 पेत्रुस काम के 20 अध्याय में पौलुस ने एफेसस के कलीसिया के सारे प्राचीनों को बुलाया.
We don't know whether all the believers at Ephesus met in one place.
हमको ये नहीं मालूम कि एफेसस के सारे कलीसियावासी लोग एक ही जगह मिलते थे कि नहीं मिलते थे.
Whether they met in smaller groups and house churches.
हमको ये नहीं मालूम कि क्या वो छोटे समूह में कलीसियाओं में घरों में मिलते थे.
So either they were all together in one place, they had multiple elders there.
या तो वो लोग एक ही जगह मिलते थे और उनके पास कई अगुवे हुआ करते थे, प्राचीन हुआ करते थे.
Or they met in different house churches, and each house church had its own elder.
और यहाँ फिर अलग-अलग कलीसियाओं के अलग-अलग प्राचीन थे और वो लोग अलग-अलग घरों मिलते थे.
Ephesus was a big and important place.
एफेसियों एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था. और मैं एफेसियों शहर जा चुका हूँ.
I walked down the street where Paul walked.
और मैं उस सड़क पे चल चुका हूँ जहाँ पे पॉलस चला था.
To the big amphitheater where they had the big riot against Paul.
और मैं उस बड़े मैदान में गया जहाँ पे पॉलस के विरोध में दंगा हुआ था.
Very moving to think many years ago Paul and the church at Ephesus were there.
और मैं जब वहाँ पे था तो बड़ा ही भावुक अनुभव था ये सोच करके कि कई साल पहले, हजारों साल पहले उसी जगह पे वहाँ पे पॉलस भी उपस्थित था.
But it's not there anymore.
लेकिन वो जगह अब नहीं है.
But in chapter 5 verse 17.
लेकिन पांचवें अध्याय उसके 17 पद में देखिए.
He mentions two main things that these elders do.
पौलुस यहाँ पे दो मुख्य बातों का वर्णन कर रहा है जो अगुए लोग करते हैं.
And what are they?
और क्या कार्य हैं ये प्राचीनों के यहाँ पे दो पांच अध्याय 17 पद में?
Well, let's put those two together.
आइए इन दोनों कार्यों को हम साथ में डाल देंगे तो क्या होगा?
That represents one thing.
तो ये दोनों मिलकर के तो एक ही काम हुआ कि नहीं हुआ?
What's the first thing he mentions the elders to do?
सबसे पहला काम क्या है जो प्राचीन लोग यहाँ पे करते हैं?
He's to rule well. He's to manage or to lead the church.
सबसे पहले उसको अच्छा प्रबंधन करना है, कलीसिया की अगुवाई देखभाल करनी है.
That is his responsibility.
ये उसकी जिम्मेदारी है.
He is to lead and to manage the church.
उसको कलीसिया की अगुवाई करना है, कलीसिया का प्रबंधन करना है.
And teach the word of God.
और साथ ही साथ उसको कलीसिया में प्रचार का काम भी करना है.
Now, another thing we can bring from this passage is, in all probability, among the elders there were those that had the special ministry of teaching and preaching.
और ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीनों के मध्य में 17 पद के अनुसार कुछ प्राचीन हैं जिनकी मुख्य सेवा प्रचार और शिक्षा की है.
All elders must be able to teach.
सारे प्राचीनों को शिक्षा देना आना चाहिए.
But different elders and pastors have different degrees of gift and experience.
लेकिन अलग अलग प्राचीनों को अलग अलग तरह का अनुभव होता है और अलग तरह का वरदान होता है शिक्षा का.
So if I ask you this question,
अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं,
I want you to look at verse 17,
और मैं देख चाहता हूँ कि आप 17 पद को देखिए.
I want you to make at least 10 observations.
और इस पद में से कम 10 ऑब्जर्वेशन अवलोकन करके बताइए. 10 17 पद में से 10 बातें बताइए.
Could you do that?
क्या आप 10 बातें बता पाएंगे?
You must learn to look at the word of God.
आपको परमेश्वर के वचन को देखना सीखना चाहिए.
But what is their responsibility?
उनकी जिम्मेदारी क्या है?
They to work hard at preaching and teaching.
उनको वचन के प्रचार करने में मेहनत करना है, सिखाने में.
It says they should be considered worthy of double honor.
और यहाँ पे लिखा है कि उनको दो गुने आदर के योग्य समझा जाए.
What does that mean?
उसका मतलब क्या हुआ?
And verse 18.
और 18 पद.
He pulls some verse out of the Old Testament about cows and oxen.
और फिर पुराने नियम से कुछ पद को उसने निकाला जो कि गाय के बारे में और बैलों के बारे में है.
What does he mean?
उसका कहने का मतलब क्या हो गया?
He was talking about preachers.
वो तो अभी तो प्रचारकों के बारे में बात कर रहे थे.
Talking about an ox.
अब वो बैलों के बारे में बात कर रहे हैं.
Maybe they're the same.
हो सकता है वो दोनों एक ही जैसे हैं.
Why does he use this verse?
क्यों करके वो इन पदों का उपयोग कर रहा है?
What is he trying to say?
वो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? क्या है? मुंह नहीं बंद कर.
I've been to different places in the countryside in India, Nepal and Bhutan.
और मैं अलग अलग गांव में गया हूँ, हिंदुस्तान में, नेपाल में और भूटान में.
Way out in the countryside, they still use the ox and the cattle to thresh the grain.
और अभी भी गांव में कई जगह वो लोग बैलों को इस्तेमाल करते हैं इसको दावने के लिए.
Sometimes they'll put him on a circle and he will go around and round and grind the grindstone.
और वो उसको बैल के बांध देते हैं, लकड़ी बांध देते हैं और वो गोल गोल घूमता रहता है और वो चक्की चलाता है.
And sometimes they put the grain under his feet and they send him back and forth over it to separate the grain from the straw.
और कई बार वो बैल के पैरों के नीचे धान डाल देते हैं और वो उसको चलाते हैं बार बार क्योंकि जब वो चलता है तो उससे जो है अनाज में धान में चावल भूसी से अलग हो जाता है.
And Paul pulls a verse out of the Old Testament.
और पौलुस पुराने नियम से एक पद को निकाल रहा है यहाँ पे.
And he applies it to pastors.
और वो पासबानों के ऊपर लागू करता है.
And he says, "You shall not muzzle the ox when he's threshing."
और वो कह रहा है कि जब बैल दांव रहा है तब उसका मुंह पे कपड़ा मत बांधो.
What does he mean?
उसका मतलब क्या, अर्थ क्या, कहने क्या मांग रहा है?
That is, you don't put a muzzle on the ox.
कि तुम बैल के मुंह को नहीं बांधते हो.
He's working.
वो कार कर रहा, मेहनत कर रहा है.
And every once in a while he stops.
और काम करते करते जब वो चल रहा है पैदल.
And he eats that which he has threshed.
और जो उसने दावा है, जिसको दबाया है, पीसा है, कूटा है, उसको बीच बीच में वो खाता है रुक करके.
What's Paul mean?
पौलुस का मतलब क्या हो गया?
He uses this verse several times in the New Testament.
पौलुस इस पद को कई बार उपयोग करता है नए नियम में.
Does he just pull this verse out of the air?
क्या उसने कहीं से आसमान से ये पद निकाल लिया?
Hey, this is a great verse. I'll just throw it in right here.
ये बढ़िया पद है, इसको मैं यहीं फेंक दूंगा यहीं पे बीच में.
Nobody knows what it means.
किसी को मालूम नहीं इसका मतलब क्या है.
I'll just put it right here.
इसलिए इसको मैं यहीं पे डाल दूंगा.
Oh, it's very clear what it means.
नहीं, इसका बड़ा स्पष्ट है कि इसका मतलब क्या है.
Our time is up.
हाँ जी. राजकुमार ब्रदर सेइंग इट्स अबाउट द इनकम ऑफ द पास्टर्स. मतलब?
Tell me one more verse in the New Testament that uses this passage and applies it to preach.
कितना खुश हो गया आप लोग इस पद को देखकर के. ना एक और पद बताइए हमको नए नियम में जहाँ पे
one more verse that uses this verse and applies it to preachers.
एक और पद बताइए जहाँ पे इस पद को इस्तेमाल किया गया है प्रचारकों के ऊपर लागू करते हुए. कोई एक और पद बताइए. Galatians 6:6. 1 Corinthians 9:9.
1 Corinthians 9, that's certain.
पहला कुरिन्थियों 9 का 9.
He says, it's written in the law of Moses, you shall not muzzle the ox while he is threshing.
पहला कुरिन्थियों 9 के 9 में लिखा है, क्योंकि मूसा व्यवस्था में लिखा है, दांव नहीं चलते हुए बैल का मुंह मत बांधना.
Paul gives his interpretation.
और भी पौलुस यहाँ पे अपना अनुवाद भी देता है.
He says, now God's not concerned about oxen, is he?
और वो कहता है परमेश्वर केवल बैलों की चिंता नहीं करता है. क्या वो केवल बैलों की चिंता करता है?
Not the ultimate concern.
क्योंकि परमेश्वर के लिए अंतिम सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है.
Now men should be concerned about their oxen.
और लोगों को अपने बैलों की चिंता तो होनी चाहिए.
The righteous man has regard for the life of his beast.
क्योंकि धर्मी व्यक्ति अपने जानवरों की भी चिंता करता है.
But Paul said, I'm not speaking about oxen.
लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैं बैलों के बारे में तो नहीं बात कर रहा हूँ.
What is his point?
लेकिन फिर उसकी बात की क्या क्या कह रहे हैं, मुख्य बात क्या कह रहे हैं?
11.
11 पद.
If we sowed spiritual things among you, is it too much that we reap material things from you?
पौलुस कहता है क्या हमने अगर तुम्हारे बीच में आत्मिक बातें बोई हैं तो क्या ये बड़ी बात है कि हम भौतिक वस्तुओं की फसल तुमसे प्राप्त करें?
Verse 14.
14 पद.
Also God has directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel.
इसी रीति से प्रभु ने आदेश दिया है कि जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो.
If the oxen works hard to prepare grain for the people to eat physical food.
अगर बैल मेहनत करता है धान को तैयार करने के लिए ताकि लोग खा सकें भोजन, तो फिर बैल को अनुमति मिलनी चाहिए कि उस भोजन में से वो खाए.
If the preacher works hard to produce spiritual food for the people of God,
अगर एक प्रचारक मेहनत करता है लोगों के आत्मिक जीवन के लिए भोजन को उत्पन्न करने के लिए,
he has the right to receive physical material benefit from his labor.
तो उसके पास अधिकार है कि अपनी मेहनत से वो भौतिक शारीरिक फायदा उठाए अपनी सेवा में.
So in Galatians chapter 6,
इसीलिए गलतियों के छठे अध्याय में और वहां पे क्या लिखा है वहां पे?
Let those who are taught the word share all good things with those who taught them.
और वे सब लोग जो वचन सिखाए जाते हैं उन लोगों के साथ अपनी वस्तुएं बांटें जो उनको वचन सिखाते हैं.
So here's the question.
तो प्रश्न अब ये है,
biblically permissible for a pastor to be supported to some degree or another by the church.
क्या ये अनुमति है, सही है बाइबल के आधार पे एक पासबान के लिए कि अपनी कलीसिया के द्वारा उसको सहायता मिले? क्या ये सही है कि नहीं है?
Many churches do not have the ability to do that.
लेकिन कई कलीसियाओं के अंदर क्षमता नहीं होती कि वे अपने पासबान को सही तरीके से सहायता कर सकें आर्थिक तौर से.
Most preachers do not exercise that right.
बहुत सारे प्रचारक लोग इस अधिकार को नहीं पूरा करने पाते.
And they have to make a living another way.
इसलिए उनको अपनी रोजी रोटी दूसरी तरीके से चलानी पड़ती है जीविका.
In many places in America,
लेकिन कई जगह अमेरिका में
the churches support their pastors.
कलीसियाएं अपने पासबानों की सहायता करती हैं.
Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
You must be able to properly interpret the word of God.
परमेश्वर के वचन को आप सही तरीके से आपको अनुवाद करना सीखना है.
You compare scripture to scripture.
आप वचन का वचन से तुलना करिए.
So that if we all studying the word of God.
ताकि अगर हम सब के सब परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं.
And we ask this question.
और हम ये प्रश्न पूछते हैं.
Pastor, bishop, elder.
पास्टर, बिशप और एल्डर.
And one person, three person.
एक व्यक्ति है कि तीन व्यक्ति हैं.
Hold up three fingers.
अगर और लोग तीन उंगलियां उठाएं.
The other half holds up one finger.
लेकिन बाकी कुछ लोग तो तीन उंगली उठाते, फिर कुछ लोग एक उंगली उठाते हैं. अगर आप परमेश्वर के वचन का सही से अनुवाद करेंगे तो आपको ये मालूम चाहिए कितनी उंगली उठानी, तीन उंगली की एक उठानी है. और आप कह रहे होंगे इससे तो मेरा सर दर्द हो रहा है. मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको सर दर्द नहीं चाहिए और परमेश्वर के वचन में मेहनत मत करिए पढ़ने के लिए. लेकिन आपके सामने दो चुनाव है, सर दर्द अभी और या फिर भविष्य में सर दर्द. ध्यान से सुनिए.
That will be a big headache.
Oh, हाँ, जो सर दर्द होगा बहुत बड़ा होगा.
Because Paul says this.
और पौलुस ये कहता है, नरक की बात.
Builds upon a foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble.
अगर कोई व्यक्ति अपनी बुनियाद डालता है सोने, चांदी, लकड़ी या भूसे से.
The fire will reveal the quality of each man's work.
आग दिखा देगी हर एक व्यक्ति के कार्य की गुणवत्ता को.
And what happens to wood, hay, and stubble in a fire?
और जो लकड़ी है और जो भूसा है और भूसे जैसी चीजें जब आग लगी तो क्या होगा, फिर क्या पता चलेगा?
What happens to gold, silver, and precious stone?
लेकिन सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को क्या होगा?
It may be melted.
हो सकता है वो गल जाए.
It may be darkened.
हो सकता है हल्का सा काला पड़ जाए.
But it's still gold, silver, and precious stone.
लेकिन फिर भी वो सोना है, चांदी और बहुमूल्य पत्थर है.
Bible says if any man's work lasts, he will receive a reward.
और बाइबल बताती है कि अगर कोई व्यक्ति का कार्य अंत तक बना रहेगा तो उसको एक पुरस्कार मिलेगा.
But if any man's work does not last, he shall suffer loss.
अगर कोई व्यक्ति का कार्य बना नहीं रहेगा अंत तक की तो फिर उसका नुकसान होगा.
He will be safe.
वो हो सकता बच तो जाएगा.
But there's a man that's coming through fire.
लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति से मानोगे जो आग में से होकर निकला है.
I've asked you several times.
मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूँ.
Have you ever seen a man come out of a burning house?
आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जले हुए घर से बाहर निकलने के बाद?
His hair is gone.
उसके बाल चले जाते हैं.
His clothes are burned.
उसके कपड़े जल जाते हैं.
His body is scarred.
उसके शरीर में निशान पड़ जाते हैं.
He's alive.
वो जिंदा जरूर है.
But he's lost everything.
लेकिन उसने सब कुछ खो दिया है.
Work hard.
मेहनत करिए.
Let's pray.
आइए हम प्रार्थना करें.